Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagwan Shiva ne kaha ki beta teri ichha ye bhi pura ho jayegi. तो भगवान शिव पार्वती के सहित तेजपुर बाणासुर के राजधानी में निवास करने लगे, घर में राजमहल में निवास करने लगे। अब तो भगवान शिव आराम से खाना पीना खा रहे, सहन कर रहे हैं। बाणासुर 1000 हाथ से शिव जी के शरीर को मालिश कर रहा है। क्या आनंद आ रहा होगा शिव जी को, है क्या आनंद आ रहा होगा। आप लोगों को पता है ना, केदारनाथ भगवान शिव किसका रूप है? केदारनाथ भैंस का रूप है, और क्या। केदारनाथ भगवान शिव किस रूप में है? भैंस के रूप में है। अब ये कहानी तुम लोगों को पता है ना, क्यों हुए भैंस, कैसे भैंस होकर रहे। द्रोणाचार्य आदि को मारने का, ब्रह्म हत्या का पाप पांडवों को पीछे लग गया। तो अब उस पाप से, ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो। किसी ने कह दिया भगवान शिव को स्पर्श कर लो तो ब्रह्म हत्या का पाप चला जाएगा। अब कहां है शिव? बोले हिमालय में है, वहां रहते हैं। तो पांडव लोग चले गए अपनी पाप नष्ट करने के लिए, भगवान को छूना चाह रहे हैं। ऐसे भी भक्त होते हो, होते। भगवान को पता चल गया ये ब्रह्म हत्या का पाप अपने में लगा हुआ, मुझे उतारना चाहते हैं, बदमाश हैं। इनके सामने मैं प्रकट नहीं होऊंगा। तो उन्होंने भैंस का रूप का धारण करके वहीं जंगल में, जंगल तो है नहीं केदार में, जंगल तो है ही नहीं, घास जरूर रहता है, वही घास चर रहे आराम से। और पांडव लोग गए शिव जी को खोज रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कहीं शिव नहीं मिल रहे। कई दिन हो गया शिव जी मिलते ही नहीं है। तो कहा कि तुमने कहा कैलाश में, माने केदार में रहते हैं शिव जी, पहाड़ों में इतने दिन हो गया मिले नहीं है। जिसने शिव जी को जानते थे उन्होंने कह दिया वो जो घास चर रहा है ना वही है। काला सा मोटा भैंस होकर भगवान शिव घास चर रहे थे, वही है, इशारा कर दिया किसी ने। अब पांचों के पांचों ब्रह्म हत्या पाप अपने से निकालकर शिव जी को स्पर्श करने के लिए पीछे लग गए। भगवान शिव भैंस होकर भागे भागे, आगे आगे शिव भाग रहे हैं और पीछे पीछे पांडव लोग भाग रहे हैं। भगवान खड़े हो जाओ। अरे भाई क्या खड़े हो गए, तो भागे शिव। शिव जी को पकड़ना संभव नहीं हुआ। तो उसमें से सबसे बलशाली जो भीम, वो जरा ऊंचे भी थे, लंबे थे, उनके पांव थोड़ा लंबे, और लपक लपक के दौड़े और शिव जी को पकड़ लिया, पूंछ पकड़ लिया शिव जी का, भैंस का वो पूंछ पकड़ लिया। खड़े हो जाओ यही। अब भगवान शिव आगे बढ़ने के लिए खींच रहे हैं, भीम खींच रोक रहा है। इतने में भगवान शिव ने अपने सिर धरती में गाड़ चुके थे, छुपने के लिए सिर तो गाड़ ही दिया था और पूंछ पकड़ लिया धड़। वो सिर जमीन में जो गाड़ा था निकल गया नेपाल में पशुपतिनाथ, पशुपति पशुओं का स्वामी हो गए वो, क्योंकि आकार पशुपति है वो, मुख वहां पहुंच गया मुखो भाग, और धड़ अभी केदारनाथ में है। और वहां की पूजा सामग्रियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया पूजा है घी और मक्खन लेके जाओ, और बड़ा भारी है वो शिवलिंग, चट्टानी शिवलिंग है, गोलमटोल नहीं है जैसे तुम लोग और जगह शिवलिंग देखते हो, वैसा नहीं है। वहां जैसे हिमाल पहाड़ है, सेम पहाड़ का ही आकार में बड़ा भारी चट्टान है। चार आदमी ऐसे पकड़ोगे तभी उसको घेरा को हम घेर पाओगे। अब उसमें खूब मलते हैं, खूब मालिश करते हैं, हा? तो तबेले वाले जानते हैं कि भाई इसके दूध ज्यादा निकालना हो तो दूध दोने से पहले खूब पानी उसमें शरीर में डालो और खूब मालिश करो, खूब डालो, खूब मालिश करो। तो भैंस पूंछ खड़ा करके आराम से, उसको बड़ा आनंद होता है, तब दुओ तो दूध खूब ज्यादा मिलता है। भैंस के प्रतीक है वो, तो इसलिए खूब मालिश करते हैं, खूब मालिश करते हैं, खूब मलो, जितना मलो घी और मक्खन उतने ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। केदारनाथ की पूजा में ये महत्वपूर्ण एक अंग है, घी का मक्खन का मालिश। भक्तो भक्ति गुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुंभे सांब तवांग्रि पल्लव युगम संस्थाप्य संबित फलम सत्वम मंत्र मुदीरयन् निज सरी रागार शुद्धिम वहन। निज शरीरागार, शरीर रूपी घर, इसको मैंने शुद्ध किया है महाराज। पुण्याहम प्रकटी करो मिरुचिरम, क्योंकि पुण्यावाचन करके इसको शुद्ध किया है, तो प्रकटी करो मी रुचिरम कल्याण मापातयन। आप यहां स्वयं आत्मा रूप में निर्वास करके, अपने आप को प्रकट करके, नित्य निवास करके, कल्याण मापातयन, मुझे कल्याण करें, मेरा उपकार करें, अनुग्रहित करें, तब इस घर बनाने का मैं अपने आप को सार्थक मानूं। यही है जीवन का सार्थकता, यही है कि इस शरीर के अंदर जो हृदय दहराकाश है, उस दहराकाश में शिव तत्व का साक्षात अपरोक्ष अनुभव करना, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साफल्यता है। जब तक परम तत्व का साक्षात अपरोक्ष नहीं होता है, तब तक ये जीवन सफल नहीं माना जाएगा। उसके आगे कहते हैं, आम्बा आम्नायां बुद्धिमादरेण सुमनः संगा समुद्यन मनो मंथानम दृढ़ भक्तिरज्जु सहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्ण सुरभिः सुरभिं चिंतामणिं धीमतां नित्यानंदम सुधाम निरंतर रमा सौभाग्यमातन्वते। शंकराचार्य जी ने फिर यहां समुद्र मंथन का स्मरण किया है। देवता और असुर नित्य निरंतर अमृत की कामना करते हुए समुद्र का मंथन करते हैं। वे लोग समुद्र का मंथन करते हो तो भले ही करें, मैं भी समुद्र मंथन करूंगा, लेकिन असुरों को लेकर नहीं। किन साधनों से समुद्र मंथन करोगे, कहां करोगे? आप लोगों ने पुराण में कई बार सुना है, सुमेरु पर्वत को मदानी बनाया है ना? सुमेरु पर्वत को क्या बनाया देवता और असुरों ने? मदानी बना लिया। और वासुकी नाग को रस्सी बना ली खींचने के लिए, उसको घुमाने के लिए, मुख की तरफ देवता लगे पूंछ की तरफ, नहीं मुख की तरफ असुर लगे पूंछ की तरफ देवता लगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, आप लोगों को पता है कि नहीं, गए होंगे बहुत लोग, या न भी गए हों पता। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है बड़ा भव्य है। और आश्चर्य की बात है, थाईलैंड जो है बुद्ध धर्म सापेक्ष राष्ट्र है, वहां राज संवैधानिक राजतंत्र है प्रजातंत्र, लेकिन राजा सिंबॉलिक है, राजा है, सेरेमोनियल है, राजा सेरेमोनियल है, रहते बड़ा राजा को भगवान की तरह मानते हैं, है बुद्धिस्ट सब बुद्ध धर्म मानते हैं। लेकिन एयरपोर्ट में तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां ठीक ये समुद्र मंथन का बड़ा भारी दृश्य बनाकर स्टैचू बनाया हुआ है, बड़ा भारी तो लॉन लॉबी है ना बड़ा, या सारे यात्री जहां इमिग्रेशन के लिए आउट और इन होते हैं मेन डोर अंदर एयरपोर्ट के अंदर टिकट लेकर बोर्डिंग होने के बाद सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब आप इन करते हैं अंदर, बाहर नहीं आउटसाइड में नहीं इनसाइड में सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, जहां से टर्मिनल किस टर्मिनल में जाना है 1 2 3 4 इत्यादि वहां का सिंडिकेट है, वहां का वहां वो सूची रखा हुआ है, उसको देख देख कर यात्री उधर उधर जाते हैं, वो सेंटर है, बड़ा भारी खुला मैदान है, ये हॉल के डबल हॉल है और बड़े ऊंचे ऊंचे तो सुमेरु पर्वत बनाया और पानी का सरोवर वहां बनाया कुंडा और सुमेरु पर्वत की प्रतीक बनाया, वासुकी नाग रखा है एक तरफ असुरों और आगे के तरफ असुर और पीछे के तरफ देवता, उनके आकार ही एकदम देवता और असुरों की आकार ही बना रखा है और पूंछ पकड़ के बैठे हैं देवता लोग, मुख के भाग पकड़ के हैं असुर, समुद्र मंथन पानी कलकला रहा है, फुहारे से पानी चल रहा है। वो दृश्य देखा तो मैं आश्चर्य में, हम लोग वैदिक सनातन धर्म के प्रतीक मानते हैं, है? वो लोग सब बुद्ध धर्म मानने वाले हैं, वे लोग हमारे पौराणिक प्रतीकों को इस तरह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में प्रदर्शित कर रहे, पुराण को कितना आदर किया उन्होंने, और हम लोग कोई परमात्मा के पौराणिक सिंबल सब जो हैं उनको भी प्रतीक जो है उनको भी हम नष्ट करते जा रहे हैं, नाश करते जा रहे हैं। हाँ मुझे बड़ा आश्चर्य भाव विवर हो गया, मैं तो थाईलैंड में जहां बुद्धिस्ट ही बुद्धिस्ट है, यहां का धर्म बुद्ध धर्म को प्राथमिकता देता है, जहां का संविधान बुद्ध धर्म सापेक्ष है, वे लोग हमारे पुराणों के प्रतीकों को इस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बना के रखा, कितना खर्चा किया होगा, कितना जगह उसने उगटा है, वाह। तो समुद्र मंथन का दृश्य वहां रखा है। हाँ तो हम भी समुद्र मंथन करेंगे महाराज, तो समुद्र क्या होगा? बोले आमना आयाम बुद्धि, ये वेद ही समुद्र होगा। शंकराचार्य जी कहते हैं वेद को क्या कहते हैं, क्या बनाया? समुद्र बना लिया। आमनायाम बुद्धि बुद्धिम आदरे न सुमना संघास्म मुद्यन मनो मंथानम दृढ़ भक्ति रज्जु सहितम। मन को मंथाना बनाया, मथानी बना ली, सुमना संघा सुसंस्कारित मन, क्योंकि मथानी जरा बलवान चाहिए, ताकतवर चाहिए, समुद्र मंथन करना है, वेद का मंथन करना है, साधारण शक्ति संकल्प शक्ति से वेद का मंथन नहीं होगा। समुद्यन मनो मंथानम, मन मंथान है, दृढ़ भक्ति रज्जु सहितम, आपके चरण में अनन्य जो भक्ति है, दृढ़ भक्ति, मजबूत डोरी रस्सी चाहिए ना, साधारण रस्सी तो टूट जाएगी, साधारण रस्सी तो टूट जाएगी, तो इसीलिए दृढ़ भक्ति बहुत दृढ़। सहितम कृत्वा मथित्वा ततः, तुमने मन रूपी मथानी शिव दृढ़ भक्ति रूपी रस्सी से और वेद रूपी समुद्र का मंथन करोगे तो उपलब्धि क्या होगा बेटा? बोले समुद्र मंथन से देवताओं को जो उपलब्धि हुआ है उससे कम उपलब्धि नहीं होगी। यहां कोई मुमुक्षु जिज्ञासु वेद का मंथन करता है, अनुसंधान करता है, मनन ही मंथन है भाई, मन के द्वारा जो मनन है निधिध्यासन है वही मंथन है, निधिध्यासन फल है, मनन मंथन है। सोमम, फल क्या होगा? सोमम, सोम माने अमृत, अमृत निकला कि नहीं समुद्र मंथन के बाद? देवता लोग उसी के लिए अमृत के लिए सोम के लिए ही तो मंथन करते थे। शंकराचार्य जी कहते हैं मैं भी सोम के लिए ही मंथन करूंगा वेद का। सोम माने उमा सहिता सोमा सह उमा सोमा, वेद का मंथन करके मुझे क्या प्राप्त होगी? बोले उमा सहिता आपकी प्राप्ति होगी, शिव जी की प्राप्ति होना। ये उमा और शिव क्या है? ब्रह्म विद्या ही उमा है। केन उपनिषद में तत्र हेमवतीम उमाम, हेमवतीम उमाम ये शब्द आया है ब्रह्म विद्या के लिए। और ब्रह्म विद्या उमा है तो ज्ञान साक्षात भगवान शिव है। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे। विशुद्ध ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ही भगवान शिव का देह है, स्वरूप है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, तीन वेद भगवान शिव के तीन नेत्र हैं, वह दिव्य चक्षु है। विशुद्ध ज्ञान उनका शरीर है और तीन वेद उनके नेत्र हैं। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे, उमा सहित शिव को हम श्रेय प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। नमः सोमार्ध धारिणे, आधा चंद्रमा जिसने धारण किया हुआ है। सोमम पहले तो उमा सहित सो, सोमम या अमृत समुद्र मंथन करने वाले को अमृत, दृढ़ मन और भक्ति रूपी रस्सी से वेद का मंथन करने का तो वेदांत, वेदांत की जो ब्राह्मी विद्या है तम तौ उपनिषदम पुरुषम पिच्छामि, वही तो सोम है और क्या। औपनिषद पुरुष कौन है? तो वही ब्रह्म। औपनिषद पुरुष उपनिषद प्रतिपादित तो पुरुष औपनिषद पुरुष वही सोम है। कल्पतरुम वहां भी कल्प वृक्ष पैदा हुआ था, यहां कल्पना ही संकल्प सिद्धि। वो तो सोता है ज्ञानी को तो वो तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा उसके संकल्प सिद्धि। सुपर्ण सुर भी कामधेनु गाई वहां पर भी और यहां पर भी सारी कामना को पूर्ण हो जाएगा। आत्मज्ञान होते ही सारी कामना पूर्ण हो जाने के कारण यही तो सुरभि है, कामधेनु गाई है, कामना पूर्ण। कामधेनु गाई को प्राप्त करके देवताओं की कामना पूर्ण नहीं हुई समुद्र मंथन करके भी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको प्राप्त करके मेरी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये कामधेनु अच्छी है कि वो कामधेनु अच्छी है? बोलो, ये कामधेनु अच्छी है। सुपर्ण सुरभि चिंतामणिम धीमताम, बुद्धिमानों के लिए ये चिंतामणि है। नित्यानंद सुधाम, और कौन सी अमृत की प्राप्ति होगी? नित्य आनंदा, समुद्र मंथन करके देवताओं को जो अमृत की प्राप्ति हुई है वो तो अनित्य आनंद है। देव सुधा वो तो अनित्य आनंद है, कहते हैं ना भागवत में, भागवत श्रवण की महिमा। जब परीक्षित सुखदेव को, मैं सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत सुनाने लगे सुक्रताल में, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और कहा सुखदेव जी को, महाराज तुम ये भागवत यहां क्यों सुना रहे हो? बोले परीक्षित को तक्षक नाग दंशन करेगा और सात दिन में मृत्यु होगी, ये निश्चित हो गया है, इसलिए मैं उसको अमर बनाना चाहता हूं। बोले उसके लिए ये भागवत क्या सुनाओगे? ये पिला दो अमृत। बोले पिलो अमृत, ये अमृत तो उसको पिला दो, भागवत लेकर स्वर्ग चलो, वहां हमको ये भागवत के अमृत पिला दो। स्वर्ग में ये अमृत नहीं मिला हमको, स्वर्ग की जो अमृत है पीने पर भी मरना पड़ता है, तेतम भूत भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षणे पुण्य मृत लोकम विसंति, फिर लौट कर आना पड़ता है। ये अमृत तो हमने कई बार पिया है, फिर कई बार धरती में आना पड़ा है। आपने सुखदेव को जो अमृत पिलाने जा रहे हो वो फिर पुनर्जन्म न होने वाला अमृत है, हम ये अमृत पान करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि क सुधा है, कहां को 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 मणि को कांच है, कहां तो चिंतामणि और कहां कांच का टुकड़ा। तुम जो कलश में अमृत ला रहे हो ना, तो कांच के टुकड़े की तरह है, और मैं जो भागवत सुना रहा हूं उसको, ये तो चिंतामणि की तरह है। नित्य आनंद, ये हमेशा आनंद देने वाला है। दुखत्रय अत्यंतिक निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, यही वो अमृत का फल है। नित्यानंद सुधाम निरंतर रमा, और लक्ष्मी भी प्राप्त हुई थी समुद्र मंथन में। तुम्हारा वेद मंथन करके कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होगी भाई तुम्हारे को? हाँ, निरंतर रमा सौभाग्य मातनवते। अष्टलक्ष्मी आप लोगों ने सुना है कि नहीं? लक्ष्मी के आठ स्वरूप हैं। एक है भोग लक्ष्मी, दूसरी है संतान लक्ष्मी, तीसरी है योग लक्ष्मी, ऐसे आठ लक्ष्मियों में से अंत लक्ष्मी है मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष लक्ष्मी वो भोग देने वाली नहीं है, योग देने वाली नहीं है, संतान देने वाली नहीं है, जन्म मृत्यु को समाप्त करने वाली है वो मोक्ष लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी में एक लक्ष्मी है मोक्ष लक्ष्मी, उसकी पूजा होती है, उसके स्तोत्र है मोक्ष लक्ष्मी के। इसलिए ब्राह्मी श्री सनत सुजात भगवान ने धृतराष्ट्र को इस ब्रह्म विद्या को ब्राह्मी श्री कहा। ब्रह्म विद्या रूपी श्री लक्ष्मी, तो वेद का मंथन करोगे तो प्रगट क्या होगा? ब्रह्म विद्या ब्राह्मी श्री अर्थात मोक्ष लक्ष्मी। आतनवते, फिर उसकी प्राप्ति जब हो जाती है, इससे बढ़कर और भाग्य खुलने का और क्या अवसर होगा? हे भगवान, मैं भी समुद्र मंथन करूंगा, मन के द्वारा वेद का मंथन करूंगा, और उससे आपकी जो प्राप्ति होगी उसमें कोई विघ्न ना आवे, बस आप उसमें सहयोग करें, सहभागी बने, और मेरे जीवन में मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ओम।